الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذا اراد احدکم ان یسأل فلیبدأ بالبدحة والثناء علی اللہ بما هو اہلہ. جب تم میں سے کوئی دعا کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی شان کے لائق اس کی تعریف کرے. پھر فرمایا ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیسأل بعد فإنه اجدر ان ینجح. اور پھر نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہے. یعنی جب بھی دعا کرے اللہ کی حمد بیان کریں اور پھر نبی پاک پر درود بھیجیں، پھر دعا کریں، تو یہ دعا کی قبولیت کی گویا کنجی بن جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً امام صاحبان یا علماء دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، پھر اس کے بعد اپنی دعا شروع کریں تو حمد بھی ہو جائے درود پاک بھی ہو جائے. تو یہ سبحان اللہ، اور بھی روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ اول آخر اگر دعا سے پہلے اور آخر میں درود پاک شامل کر لیا جائے تو دعا مقبول ہو جاتی ہے، کہ درود ہر حال میں قبول ہوتا ہے. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا اللہ اول کو قبول کر لے آخر کو قبول کر لے اور دعا غیر مقبول ہو جائے. تو اول آخر مقبول چیزیں ہوں گی، درود ہوگا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا دعا بھی قبول ہو جائے گی. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک بار پھر بیان کا جو ہمارا ایک تسلسل ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کا، ایک آیت یا کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں جانتے ہیں. آج جو آیت ہے وہ بڑی کمال کی آیت ہے. آیت ہے پارہ نمبر ایک ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 89. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے. تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر. بہت کمال کی آیت ہے، اس میں بہت کچھ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. اب اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑے نرالے انداز میں، بڑے یونیک انداز میں بیان کی گئی ہے. اب ذرا اس آیت کریمہ کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم. فرمایا اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے. یعنی قرآن کریم ایک ایسی شاندار با کمال کتاب ہے، اتنی بلند رتبہ کتاب ہے کہ اس نے آ کر تورات اور انجیل کی تصدیق کر دی. چونکہ قرآن کریم بنی اسرائیل اور آسمانی کتابوں کی شان بڑھانے والی کتاب ہے، ان کے سچا ہونے کی گواہ ہے، لہٰذا ان لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی قرآن نازل ہوا فوراً ایمان لے آتے، قرآن پر ایمان لے آتے، اللہ کے آخری نبی پر ایمان لے آتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. مگر ان کی حالت دیکھو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جذبات اور تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد، نبی پاک کی بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد ان کے انداز ہی چینج ہو گیا. یہ بڑی کمال کی بات ہے. شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اس زمانے کے جو یہودی تھے बनी इसराइल के लोग थे वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की गोया आमद का इंतज़ार कर रहे थे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आमद की बातें बताते थे लोगों को, क्योंकि उनकी किताबों में मौजूद था। कुरान फरमाता है वकानू मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लदीना कफरू, और क्या कहते थे, और उससे पहले इसी नबी के वसीले से काफिरों के खिलाफ फतह मांगते थे, यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगते थे, परेशानियों में, जंगों में आप अलैहिस्सलाम के नाम के वसीले देकर दुआ मांगते थे और फतह पाते थे, ठीक है ना। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला जो सहाबी रसूल हैं, कुरान पाक का बड़ा कमाल का इल्म था आपके पास, आपको तर्जमानुल कुरान भी कहा जाता है। फरमाते हैं इस्लाम आने से पहले खैबर के यहूदियों और कबीलाए गतफान के दरमियान बड़ी दुश्मनी थी, आपस में जंगें थी, जब यहूद शिकस्त खाते थे ना बिल्कुल लगता था कि अब गए, अब मारे गए, अब हार गए, तो फिर क्या करते थे, दुआ करते थे इन्ना नसअलुक बिहक्किन नबिय्यिल उम्मिय्यिल लदी वअतना अन तुखरिजहू लना फी आखिरिज़ ज़मान इल्ला तंसुरुना अलैहिम। अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ करते थे, ऐ अल्लाह पाक वो नबी उम्मी जिनकी आमद का तूने वादा फरमाया है, वो आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाएंगे, अल्लाह पाक हम उनके वसीले से तुझसे दुआ मांगते हैं, हमें दुश्मन पर फतह अता फरमा। जब ये लोग दुआ मांगते थे अल्लाह पाक उन्हें जंग में फतह अता फरमा देता था, यानी वो आसमानी किताबों पर ईमान रखने वाले थे, यानी उस जमाने के जो गैर मुस्लिम थे जो आसमानी किताबों को नहीं मानते थे उनसे जंग होती थी, तो उन गैर मुस्लिमों के मुकाबले में ये आसमानी किताबों के मानने वाले अल्लाह की बारगाह में नबी पाक की आमद से पहले, यानी सुभान अल्लाह, यहाँ एक और बात समझनी है, नबी पाक तशरीफ नहीं लाए मगर उनका चर्चा हो रहा है, उनका जिक्र हो रहा है, उनके वसीले से दुआएं मांगी जा रही हैं। शायर लिखते हैं ना, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, और अल्लाह उनके वसीले से मांगी जाने वाली दुआओं को कबूल भी फरमाता और जंगों में उन्हें फतह भी मिल जाती थी। अच्छा, अब यहाँ एक और बात, सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर अब जब ये जो अंसार साहबा थे ना, जब नबी पाक मक्के से मदीने गए तो अंसारी साहबा फौरन ईमान ले आए, मदीने में इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला, उसका एक रीज़न था, उलमा ने लिखा कि जो उस ज़माने में अहले किताब थे यानी यहूदी थे वो अंसार को पता ही क्या कहते थे कि देखो आखिरी नबी का वक्त आने वाला है, जैसे ही आखिरी नबी आएंगे हम उन पर ईमान ले आएंगे, जैसे ही आखिरी नबी आएंगे हम उन पर ईमान ले आएंगे, फिर तुम पर गलबा पा लेंगे। अंसार को ये मालूम था कि आखिरी नबी आने वाले हैं, लेकिन कहते हैं ना किसी की किस्मत कमाल की होती है, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने पहुंचे होना तो ये चाहिए था कि उस ज़माने के जो यहूदी थे जो अहले किताब थे वो भी ईमान ले आते, मगर वो ईमान न लाए, अंसार ने धड़ाधड़ ईमान कबूल करना शुरू कर दिया, वो सहाबी के मर्तबे पर पहुंच गए, उन्होंने नबी पाक की और पूरे काफिले वालों की मदद की, पूरा मदीना सुभान अल्लाह आबाद हो गया, क्योंकि वो अहले किताब से सुनते रहते थे कि आखिरी नबी आने वाले हैं। मगर उस जमाने के यहूदियों ने क्या किया, फलम्मा जाअहुम्मा अरफू कफरू भी, तो जब उनके पास वो जाना पहचाना नबी तशरीफ ले आया तो उसके मुनकिर हो गए। अल्लाह अकबर। देखिए ये भी बड़ी अहम बात है, अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर क्या है किसी के बारे में। बाज़ औक़ात लगता ऐसा है कि ये बंदे तो इस्तकबाल करने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर नसीब में ईमान नहीं था, ईमान ना लाए। बनी इसराइल को चाहिए तो ये था कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के कदमों पर निसार हो जाते, दो जहां की भलाइयां पा लेते, मगर अफसोस वो जाने पहचाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर बरकतें लूटने की बजाय उनका इनकार किया, उन पर बदबख्ती गालिब आई और कुफर के गहरे गड़े में जा गिरे। कुरान क्या कहता है, फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो अल्लाह की लानत हो इनकार करने वालों पर। अल्लाहु अकबर। अब सुभान अल्लाह, यहां ये देखना है कि अंसार साहबा की किस्मत कैसी जागी कि बताया उन्हें बनी इसराइल ने कि आखिरी नबी आने वाले हैं, जैसे ही प्यारे आका की तशरीफ आवरी हुई वो ईमान लाकर सहाबी बन गए और इन बदबख्तों ने इनकार करके कुफर के गहरे गड़े में जा पड़े। ये तो हो गया आयत का एक तर्जमा और बैकग्राउंड, लेकिन अब मुझे और आपको लेसन क्या मिला, दो बड़े अहम लेसन हैं इस आयत से, दो बड़े अहम सबक हमें मिलेंगे। पहली बात कि एक कायदा जहन में रख लें कि पिछली उम्मतों का हर वो काम जिसको अल्लाह करीम ने कुरान में जिक्र किया उसको और उसको बुरा नहीं कहा, तो वो हमारे लिए जायज है, और वो काम अगर अच्छा है तो वो काम भी अच्छा है। मिसाल के तौर पे इस मकाम पर अल्लाह ने क्या फरमाया, वकानू मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लदीना कफरू, और इससे पहले ये उसी नबी के वसीले से काफिरों के खिलाफ फतह मांगते थे। तो पता क्या चला कि पिछली कौमें भी नबी पाक के वसीले से दुआ मांगती थी, और अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र भी किया और इसको गलत नहीं फरमाया। और यहां अरबी का एक कायदा भी समझ लें कि लफ्ज अला जब तलब और दुआ के साथ आए तो ये मुश्किल पर दलालत करता है, यानी बनी इसराइल को जब भी उस वक्त के गैर मुस्लिमों के मुकाबले में मुश्किल पेश आती थी, प्रॉब्लम पेश आती थी, तो उस मुश्किल के हल के लिए नबी पाक के वसीले से दुआ मांगा करते थे। अल्लाह करीम ने पिछली कौमों के इस अमल का जिक्र भी किया, इसे बुरा नहीं कहा। तो पता चला कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करना ये ना सिर्फ हमारे लिए जायज़ है बल्कि अच्छा है, मुस्तहब है। सुभान अल्लाह, जब भी मुश्किल आए, परेशानी आए, काम अटक जाएं, माशी परेशानियां हो जाएं, कर्ज चढ़ जाए, बीमारियां घेर लें, ख्वाहिशात पूरी ना हो रही हो, कब्रो आखिरत का खौफ आए, जहन्नम के जिक्र सुनकर दिल फटने लगे, हमें चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करें। उनका वसीला अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल है। सुभान अल्लाह, सैयदी आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत क्या खूबसूरत अंदाज में अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करते हैं ना कि या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो, या इलाही भूल जाऊं नजा की तकलीफ को, शाद ये दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो, या इलाही जब बहें आंखें हिसाबे जुर्म में, उन तबस्सुम रेज होंठों की दुआ का साथ हो, या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। अच्छा, हो सकता है अभी भी किसी के जहन में हो कि जनाब ये नबी पाक के वसीले से दुआ मांगना ठीक है, पिछली कौमें तो करती थीं, क्या सहाबा का भी ये अमल रहा, क्या ईमान लाने के बाद मुसलमानों ने भी ये काम किया? चले जरा इसको भी डिटेल में समझ लें ताकि ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। सुभान अल्लाह, सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ हज़रत आदम अला नबीना वाले सलातु वस्सलाम की बारगाह में। हज़रत आदम अलैहि सलाम ने अर्श के पाए पर हर हर जगह अल्लाह पाक के नाम के साथ मोहम्मद लिखा हुआ देखा, ठीक है। अच्छा, अल्लाह पाक अलैहि सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह ये कौन है, जहाँ तेरा नाम देखता हूँ वहाँ ये लफ्ज़ मोहम्मद भी देखता हूँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो फरमाया, हादा वलदुकल्लज़ी लौलाहु मा खलक्तुका, ए आदम ये आपकी औलाद में से हैं, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं आपको भी पैदा ना करता है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर तशरीफ लाए तो अर्ज़ की, या रब्बी बिहुर्मति हादल वलदी इरहम हादल वालिद, ए अल्लाह उस इज्जतदार बेटे के सदके इस वालिद पर भी रहम फरमा दे। हज़रत आदम अपनी औलाद में आने वाले आखिरी नबी अलैहिस्सलाम का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या आदमो लौ तशफ्फअत इलैना बि मुहम्मदिन फी अहलिस समावाति वल अर्दी लशफ्फअनाका, ऐ आदम अगर आप मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से तमाम आसमानों और तमाम जमीन वालों के लिए दुआ करते तो हम सब के हक में आपकी दुआ कबूल फरमा लेते। अब इससे एक और बात सीखने को मिली कि ये जो हज़रत आदम और रब की बारगाह में बातचीत हो रही है कि ऐ आदम अगर मैं तेरी औलाद में मोहम्मद ना होते तो मैं ये दुनिया ही ना पैदा करता, मैं आदम आपको भी पैदा ना करता, हज़रत आदम पैदा ना होते तो हम भी दुनिया में ना आते। यही बात तो बरेली के ताजदार लिखते हैं कि ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। जरा मिलके कहो ना, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मेरे आका वजह तखलीके कायनात हैं, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। अल्लाह अकबर। एक और हदीस कुदसी है जिसमें रब फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम्हें ना बनाता तो ये कायनात ही ना बनाता, ये चांद सूरज या आसमान ना बनाता। अल्लाह ने ये सारे जहान जो है वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की वजह से सुभान अल्लाह बनाया। अब आगे चलते हैं, सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला मैंने पहले हजरत आदम का अकीदा और उनका अंदाज बताया, अब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में सुने। कहते हैं नाज शरीफ पढ़ते हो, ये कहाँ से साबित है? अरे सहाबा नाते पढ़ा करते थे, हजरत हसन बिन साबित की नाते तो सुनी होंगी। आओ हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का शेर सुनाता हूँ। वो लिखते हैं बिही कद अजाब अल्लाह आदमा इज़ दआ व नुज्जी फी बतन सफीनती नूह। कहते हैं इन्हीं के वसीले से अल्लाह पाक ने आदम अलैहि सलाम की दुआ कबूल फरमाई, इन्हीं के सदके हजरत नूह अलैहि सलातु व सलाम की कश्ती को नजात मिली है। वमा दर्रतिन नारुल खलील अली नूरिही व मिन अजलिही नाल अल फिदा अज़बीहु। अरे इन्हीं के नूर की बरकत से इब्राहिम अलैहि सलाम पर आग ठंडी हो गई, इन्हीं के सदके हजरत इस्माइल अलैहि सलाम के लिए जन्नत से फिदिया भेजा गया है। यानी सुभान अल्लाह, जिसको जो मिला है वो सरकार अलैहि सलातु व सलाम का सदका है। अल्लाह अपने हबीब से इतना प्यार करता है, अल्लाह करीम की खास रहमत है, क्योंकि नबी पाक रहमतुल आलमीन है। अब जरा और आगे चलते हैं, सीरत की किताबों में बड़ी कमाल की रिवायत है। एक साहिब थे, उनका नाम है जुलहुमा। कहते एक मरतबा मक्के पहुंचा, उन दिनों कहत साली थी, लोग भूख से निढाल थे। मैंने देखा कि कुरैश के लोग अबू तालिब के पास पहुंचे। कहा ए अबू तालिब, वादियां खुश्क हो गई हैं, घराने भूख प्यास से तंग हैं, आओ बारिश की दुआ करो। ये सुनकर अबू तालिब मैदान की तरफ रवाना हो गए। उनके साथ एक नन्हे शहजादे थे, कअन्नहु शम्सु दजनिन। सुभान अल्लाह, वो कैसे हसीन थे, उनका चेहरा पाक कैसे चमक रहा था, गोया बादलों के दरमियान से सूरज निकल आया हो। एक बादल उनके सर पर साया किए साथ चल रहा था, साथ में और भी बच्चे थे। चलते चलते अबू तालिब काबे शरीफ के पास पहुंचे, उस नन्हे दिल रुबा को काबे से टेक लगाकर बिठा दिया। उस वक्त आसमान पर बादल का निशान नहीं है। जरा तसव्वुर कीजिए, मक्का है, भूख है, कहत है, बारिश का नाम नहीं है। एक हसीन चेहरे वाले नन्हे बुन्ने दिल रुबा शख्सियत को लेकर अबू तालिब काबे की दीवार के पास पहुंचते हैं। अबू शहजादे ने क्या किया, अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई। अल्लाह अकबर, उंगली उठने की देर थी कि बादल उमंड आए, तेज बारिश शुरू हो गई। और वो तारीखी शेर अबू तालिब ने कहा, जो आज भी सीरत की किताबों में सुनहरे हरूफ से जगमगा रहा है, और वो शेर क्या है, वो अब यदु युस्तस्कल गमाम बिवजहिही फिमालुल यतामा इस्मतुद्दिन अरामिली। कहते और वो चमकदार चेहरे वाले हैं जिनके वसीले से बारिश मांगी जाती है, वो यतीमों का सहारा और बेवाओं के लिए पना है। और वो खूबसूरत चेहरे वाली हस्ती, मुस्कुराती और नूरानी चेहरे वाली शख्सियत कोई और नहीं, वो हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनका बचपन के आलम में ये कमाल है। मौलाना हसन रज़ा खान साहब कहते हैं ना, बे यारो मददगार जिन्हें कोई ना पूछे, बे यारो मददगार जिन्हें कोई ना पूछे, ऐसों का तुझे यारो मददगार बनाया। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में सरकार दो आलम अलैहि सलाम का वसीला पेश करना, ये एक ऐसा कमाल का काम है जो दुआओं की कबूलियत का सबब बनता है। दुआओं में नबी पाक अलैहि सलातो सलाम का जब जिक्र आ जाए तो ख़ास अल्लाह की रहमत बरसती है। मनकूल है मराकश का शहर फास, बड़ा मशहूर शहर है। वह एक नेक औरत रहती थी, उसकी बड़ी कमाल की और बड़ी यूनिक आदत थी कि जब भी उसे कोई परेशानी होती थी ना, डिफिकल्टी होती थी, वो क्या करती, आंखें बंद करके प्यार दोनों हाथ अपने चेहरे पे रखती और आंखें बंद करके बड़ी मोहब्बत से कहती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस सरकार अलैहि सलाम का बड़े प्यार से नाम लेती थी, उसकी वो परेशानी दूर हो जाती थी। जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत से उसकी परेशानी दूर हो जाती। उसका इंतकाल हुआ, कब्र में जब उसको उतार दिया गया तो किसी रिश्तेदार ने ख्वाब में देखा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ, तो कहती है कि मेरे पास मुनकर नकीर फरिश्ते आए थे, सवाल करने आए। मेरी तो एक आदत थी, जब कोई टेंशन सामने आती मैं अपने दोनों आंखों पर चेहरे पर हाथ रख के सरकार का नाम लेती, अल्लाह उनके नाम की बरकत से मेरी मुश्किल दूर कर देता। कहती मैंने चेहरे पर हाथ रखा, नबी पाक का नाम लिया, और जब मैंने चेहरे से हाथ हटाया तो दोनों फरिश्ते वापस जा चुके थे। तो ये वो नाम है, नबी पाक का जिक्र वो जिक्र है जो मुसीबतों को दूर कर देता है, जो परेशानियों को दूर करता है। यकीनन मुश्किल दूर करने वाली ज़ात, यकीनन मदद करने वाली ज़ात सिर्फ रब की ज़ात है। मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में जिक्र मुस्तफ़ा इतना प्यारा है, बिला तमसील समझाता हूँ, यकीनन अल्लाह औलाद से पाक है, वो ना किसी का वालिद है ना उसका कोई बेटा है, मगर समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर किसी सखी के पास जाकर उस उसके प्यारे बच्चे का जिक्र किया जाए या उसके किसी प्यारे फैमिली मेंबर का जिक्र किया जाए या उसका वसीला पेश किया जाए तो सखी भी कहता है मेरे बच्चे का नाम ले रहा है, मेरे किसी प्यारे का नाम ले रहा है। सखी अपने दर से खैरात देता है, मेरे रब के यहाँ कोई औलाद नहीं, वो लम यलिद वलम यूलद है, मगर सुभान अल्लाह अपने हबीब से उसे बड़ा प्यार है। अरे जब जिसके सदके कायनात बनाई है, जब उसका जिक्र उसकी बारगाह में पेश करते हैं तो अपने करम के दरवाजों को वो खोलकर हमारी झोलियां भर देता है। तो आज कुरान मजीद की आयत और सहाबा और अंबिया के अंदाज से हमने सीखा कि सुभान अल्लाह पिछली कौमें भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करके अल्लाह की बारगाह में दुआएं करती और रब करीम उनकी दुआओं को कबूल फरमाता। अच्छा, इस आयत में एक और बड़ी खूबसूरत बात कि फलम्मा जाअहुम मा अरफू, तो जब उनके पास वो जाना पहचाना नबी तशरीफ ले आया तो सुभान अल्लाह कुरान ने एक और यूनिक शान नबी पाक की बयान की कि आप जाने पहचाने नबी हैं। मालूम हुआ कि अहले किताब सरकारे दो आलम अलैहि सलाम की दुनिया में आने से पहले उन्हें पहचानते थे। हैं, फरमाया फलम्मा जाअहुम मा अरफू, तो जब उनके पास वो जाना पहचाना नबी तशरीफ ले, कैसे जानते थे? अल्लाह कुरान में एक और जगह इरशाद फरमाता है अल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, फरमार वो लोग जिन्हें हमने किताब अता फरमाई है वो उस नबी को ऐसा पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। ऐसा पहचानते थे, अपने बेटे को हम कैसे पहचानते हैं? 100 बच्चों के दरमियान बंदा अपने बेटे को पहचान लेता है, उसकी आवाज़ पहचान लेता है, उसके चलने को पहचान लेता है, उसके स्टाइल से पहचान लेता है ये मेरा बेटा है, क्योंकि अपनी औलाद है ना। सुभान अल्लाह, कुरान ने मिसाल कैसी दी कि जैसे अपनी औलाद को पहचानते थे नबी पाक की आमद से पहले ही सरकार दो आलम अलैहि सलाम के वो औसाफ उन्हें मालूम थे, गुफ्तगू के हर हर अंदाज से पहचानते, मेरे आका की हर अदा से वो पहचानते थे कि अल्लाह के आखिरी नबी सुभान अल्लाह आने वाले हैं। अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले लोगों ने निशानियां बयान की, जरा गौर से सुनिएगा। मुल्क शाम के अहले किताब यानी तौरात और इंजील पर ईमान रखने का दावा करने वालों के पास हज़रत यहया के खून मुबारक से आलूद एक सफ़ेद जुब्बा था। उनकी किताबों में लिखा था कि जिस रात इस जुब्बे से खून टपके जान लो कि वो रात वालिद मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला की विलादत की रात होगी। चुनाचे जिस रात हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला की बर्थ हुई उस जुब्बे के ज़रिए मुल्क शाम में यानी सीरिया में अहले किताब को पता चल गया कि आपके वालिद पैदा हो गए हैं, और माद अल्लाह वो हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के इरादे से हरम में पाक आए मगर अल्लाह करीम ने उनके उस शर से उन्हें महफूज रखा, वो नामुराद लौट गए। अब जो भी हरम में पाक जाता था मुल्क शाम वाले उनके बारे में पूछते थे कि हजरत अब्दुल्ला के बारे में बताओ, और जनाब हजरत अब्दुल्ला का नूर फिर आबोताब से चमकने लगा। तो कहने का मकसद यह है कि उनकी किताबों में न सिर्फ नबी पाक की आमद की निशानी मौजूद थी बल्कि आपके वालिद कब पैदा होंगे ये भी डिटेल के साथ मौजूद था। आज जरा गौर कीजिए ना, टेक्नोलॉजी का माना है, सैटेलाइट है, हम यहां बैठकर दुनिया की खबरें मिनटों में हमें पहुंच जाती हैं, दुनिया में कोई भी वाकया होता है थोड़ी देर में सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचता है, मगर वो कैसा दौर था जब कबूतरों के जरिए पैगाम भेजा जाता था। मगर हजरत अब्दुल्ला की विलादत मक्का पाक में हुई है और तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर मुल्क शाम है, मगर वहां 40 दिन लगते थे पहुंचने में, मगर नबी पाक के वालिद की विलादत होती है उनके पास निशानियां थी, उन्हें पता चल जाता था कि मक्के में हजरत अब्दुल्ला की विलादत हुई है। आप गौर करें कितना डिटेल्ड तस्करा आसमानी किताबों में मौजूद था, किस तफसील के साथ नबी पाक का जिक्र खैर मौजूद था। हजरत मालिक बिन सिनान मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, फरमाते जिस रात नबी पाक की विलादत हुई उस रात मदीने पाक की सूरत हाल क्या थी। हजरत मालिक बिन सिनान रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मदीने की एक रात थी, हम इसी तरह आपस बैठे चाय वगैरह पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, कबीला बनू अब्दुल अशल में मैं अपने दोस्तों के पास गया, वहां यूशा नामी एक यहूदी था, क्या देखता हूं कि लोगों को उसने जमा किया हुआ है, कह रहा है अहमद नबी की आमद का वक्त करीब है, वो मक्के में तशरीफ लाएंगे, फिर उसके बाद यूशा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक और تفصیل کے ساتھ اوصاف بیان کیے. حضرت مالک بن سنان کہتے ہیں میں سننے لگا, مجھے باتیں بڑی عجیب لگی, یہاں سے اٹھ کر اپنے قبیلے میں آیا, یہاں دیکھا کہ وہاں بھی ایک شخص ہے جس نے لوگوں کو جمع کیا ہے اور آخری نبی کی آمد کی باتیں کر رہا ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں, ان کی آمد کے تذکرے ہیں. اسی دوران ایک شخص نے کہا قتل الکوكب الاحمر الذي لم يطلع الا بخروج نبي وظهوره ولم يبق احد الا احمد وهذه مهاجره. فرمایا وہ سرخ ستارہ جو صرف اور صرف کسی نبی کی ولادت کے وقت نکلتا ہے وہ نکل چکا اور اب نبیوں میں صرف احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی باقی ہیں. وہ تشریف لائیں گے اور یہ شہر مدینہ ان کی ہجرت کا مقام ہے. اللہ اکبر, ذرا غور تو کیجئے کتنا ڈیٹیل سے ذکر ہو رہا ہے, مدینے کی گلیوں میں ذکر ہو رہا ہے اور ستارے بتا رہے ہیں کہ نبی پاک کی آمد ہونے والی ہے, یعنی ایک ایک نشانی کتابوں میں موجود تھی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا وہ ہیں جن کی شان کیا ہے کہ وہ اشارہ فرمائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا, نبی پاک دعا فرماتے تو سورج پلٹ آتا. میرے آقا سبحان اللہ, اللہ نے کیسی شانیں عطا فرمائی. معجزات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے مگر میں ایک اور طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. یہ تو اس وقت کی شان تھی نا, مگر قرآن کا نبی پاک سے ایک وعدہ ہے اور قرآن فرماتا ہے وللآخرت خیر لک من الاولی, اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے. یعنی جب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے پیدا فرمایا آپ انتہائی اونچا رتبہ رکھتے تھے, جب سے اللہ پاک نے آپ کو فرمایا تب سے اب تک آپ ہی سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب کے آقا ہیں. مگر سبحان اللہ, ہر گزرنے والا دن آپ کے رتبوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ ہمیں ربیع الاول کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.